मरकुस अध्याय 8। उन्हीं दिनों एक दूसरे अवसर पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कहा,
मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज देता हूँ तो वे मार्ग में ही ढेर हो जाएंगे। कुछ तो बहुत दूर से आए हैं।
उसके शिष्यों ने उत्तर दिया,
इस जंगल में इन्हें खिलाने के लिए किसी को पर्याप्त भोजन कहां से मिल सकता है?
फिर यीशु ने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने उत्तर दिया,
7।
फिर उसने भीड़ को धरती पर नीचे बैठ जाने की आज्ञा दी और उसने वे 7 रोटियां ली, धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया, और फिर उन्होंने भीड़ के लोगों में बांट दिया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी बांट देने को कहा। लोगों ने भरपेट भोजन किया और फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके 7 टोकरियां भरी। वहां कोई 4,000 पुरुष रहे होंगे। फिर यीशु ने उन्हें विदा किया और वह तत्काल अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आए और उससे प्रश्न करने लगे। उन्होंने उससे कोई स्वर्गीय आश्चर्य चिन्ह प्रकट करने को कहा। उन्होंने यह उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा था। तब अपने मन में गहरी आह भरते हुए यीशु ने कहा,
इस पीढ़ी के लोग कोई आश्चर्य चिन्ह क्यों चाहते हैं? इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
फिर वह उन्हें छोड़कर वापस नाव में आ गया और झील के परले पार चला गया। यीशु के शिष्य कुछ खाने को लाना भूल गए थे। एक रोटी के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं था। यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा,
सावधान, फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से बचे रहो।
हमारे पास रोटी नहीं है।
इस पर वे आपस में सोच विचार करने लगे। वे क्या कह रहे हैं ये जानकर यीशु उनसे बोला,
रोटी पास नहीं होने के विषय में तुम क्यों सोच विचार कर रहे हो? क्या तुम अब भी नहीं समझते बूझते? क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है? तुम्हारी आंखें हैं, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हारे कान हैं, क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या तुम्हें याद नहीं जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियों के टुकड़े किए थे और तुमने उन्हें कितनी टोकरियों में बटोरा था?
12,
उन्होंने कहा।
और जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियों के टुकड़े किए थे तो तुमने कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी?
7,
उन्होंने कहा। फिर यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम अब भी नहीं समझे?
फिर वे बैतसैदा चले आए। वहां कुछ लोग यीशु के पास एक अंधे को लाए और उससे प्रार्थना की कि वह उसे छू दे। उसने अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे गांव के बाहर ले गया। उसने उसकी आंखों पर थूका, अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा,
तुझे कुछ दिखता है?
ऊपर देखते हुए उसने कहा,
मुझे लोग दिख रहे हैं, वे आसपास चलते फिरो जैसे लग रहे हैं।
तब यीशु ने उसकी आंखों पर जैसे ही फिर अपने हाथ रखे, उसने अपनी आंखें पूरी खोल दी। उसे ज्योति मिल गई थी। वह सब कुछ साफ साफ देख रहा था। फिर यीशु ने उसे घर भेज दिया और कहा,
वह गांव में न जाए।
और फिर यीशु और उसके शिष्य कैसरिया फिलिप्पी के आसपास के गांवों को चल दिए। रास्ते में यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा,
लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ?
उन्होंने उत्तर दिया,
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, पर कुछ लोग एलिया और दूसरे तुझे भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं।
फिर यीशु ने उनसे पूछा,
और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ?
पतरस ने उसे उत्तर दिया,
तू मसीह है।
फिर उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके बारे में यह किसी से ना कहें, और उसने उन्हें समझाना शुरू किया,
मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होंगी और बुजुर्ग प्रमुख याजक तथा धर्मशास्त्रियों द्वारा वह नकारा जाएगा और निश्चय ही वह मार दिया जाएगा, और फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा।
उसने उनको यह साफ साफ बता दिया। फिर पतरस उसे एक तरफ ले गया और झिड़कने लगा, किंतु यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों पर दृष्टि डाली और पतरस को फटकारते हुए बोला,
शैतान मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों से सरोकार नहीं रखता बल्कि मनुष्य की बातों से सरोकार रखता है।
फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उनसे कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा उसका जीवन बचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खोकर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मेरे नाम और वचन के कारण लजाता है तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्ग दूतों के साथ अपने परम पिता की महिमा सहित आएगा तो वह भी उसके लिए लजाएगा।